अध्याय 11 भाषा और अनुभूति के अद्वैत की तलाश। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की समीक्षा दृष्टि। हिंदी के नए समीक्षकों में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी मुख्यतः काव्य भाषा को केंद्र में रखकर समीक्षा कर्म में प्रवृत्त हुए हैं। आपकी एक दृष्टि में अनुभूति और भाषा एक है। आपके शब्दों में अनुभव का अनुभव यानी कि अनुभूति या की भाषा है। उदाहरण देकर अपनी बात समझाते हुए आप कहते हैं, जाड़ा लगना अनुभव है और यह कि जाड़ा लग रहा है अनुभव का अनुभव है, यानी कि अनुभूति या की भाषा है। फिर इस अनुभव के अनुभव का अनुभव कवि के यहाँ संभव होता है। निराला की पंक्ति है, शिशिर की सर्वरी से हिंस्र पशुओं भरी कविता की इस पंक्ति में जाड़ा लगना यह मूल अनुभव त्रासद भाव चित्र बन गया है। आपके अनुसार भाषा अपने में ऐसी प्रक्रिया है जहाँ परंपरा, परिवेश और व्यक्तित्व, विचार और अनुभव जो काव्य रचना करते समय वह उसे सृजनात्मक बनाता है। भाषा का सृजनात्मक स्तर बिंब विधान की स्थिति में सर्वाधिक विकसित होता है। बिंब में अर्थ के कई स्तर संश्लिष्ट हो जाते हैं। जीवन के मूल संदर्भ काव्य में पहले प्रतीक बनकर आते हैं और उसके बाद बिंब का रूप ले लेते हैं। प्रतीकों को भाव चित्र या बिंब के रूप में संगठित करना कवि की सृजनात्मक दक्षता पर निर्भर है। सफल बिंब रचना न होने पर प्रतीक कथानक रूढ़ी बन जाते हैं और अपनी सृजनात्मक क्षमता खो देते हैं। डॉक्टर चतुर्वेदी उदाहरण देकर स्पष्ट करते हैं कि चक्रव्यूह महाभारत का एक विशिष्ट संदर्भ है। बहुत समय तक चक्रव्यूह शब्द के साथ महाभारत का पूरा परिवेश गर्भवती सुभद्रा को व्यूह रचना की जटिलता समझना गर्भस्थ शिशु के रूप में अभिमन्यु का उसे सुनना आदि जुड़ा हुआ था। कालांतर में यह शब्द एक प्रतीक बन गया और इससे मानसिक उलझनों में घिर जाने का अर्थ लिया जाने लगा। इसके बाद नई कविता में चक्रव्यूह जब भाव चित्र या बिंब के रूप में संक्रमित हुआ तो इसका बिंबार्थ हुआ। मृत्यु के भय से युद्ध करता हुआ आधुनिक व्यक्ति मन यहाँ आकर महाभारत के मूल संदर्भ से अलग कवि ने स्वयं एक अपना परिवेश निर्मित कर लिया। इस प्रकार सृजनात्मक काव्य भाषा के विकास का चक्र पूरा हो गया। प्रतीकार्थ काव्य भाषा के विकास का एक स्तर है। इससे अधिक विकसित स्तर बिंब विधान का है। यह कई अर्थों के संश्लेषण को सघन भाव चित्रों के माध्यम से व्यक्त करता है। इसका कोई एक सीमित निर्दिष्ट पूर्व स्वीकृति और स्थिर अर्थ नहीं होता। चाक्षुष संवेदन बाह्य रूपाकार की प्रतीति करना है, जबकि सफल बिंब आंतरिक भाव स्थितियों को भी व्यंजित करता है। चतुर्वेदी जी के अनुसार चाक्षुष पक्ष यानी कि एक दृश्य प्रतिमा का निर्माण कर सकना वस्तुतः बिंब विधान की एक प्राथमिक और गौण स्तर है। मुख्य बात यह है कि संश्लिष्ट गठन होने के कारण बिंब में उसके विभिन्न तत्वों के बीच संपर्क और टकराहट से एक द्वंद्वात्मक डायलेक्टिक प्रक्रिया परिचालित होती है जो अर्थ को विकसनशील बनाती है। इस तरह बिंब प्रधानतः और अनिवार्यतः एक अर्थ संश्लेष है और इसलिए रचना में भाषा और अनुभूति के अद्वैत की तलाश इसलिए रचना में काव्य भाषा या कि काव्य बनने की मुख्य प्रक्रिया है। भाषा और अनुभूति के अद्वैत को केंद्र में रखकर समीक्षा के क्षेत्र में सक्रिय डॉक्टर चतुर्वेदी साहित्य में संवेदना को विशेष महत्व देते हैं। ये यह मानते हैं कि भाषा और संवेदना की स्थिति संश्लेषणात्मक है। भाषा और संवेदना दोनों का विकास युगपत होता है। संवेदना के विकास स्तरों को भाषा के विकास स्तरों के साथ पहचाना जा सकता है। उनकी मान्यता है कि चित्त वृत्तियों का संश्लेष ही संवेदन है। रचनाकार युग विशेष की संवेदना को समझकर अपनी रचना में उसे प्रतिबिंबित करता है। संवेदना का बदलाव साहित्यिक युगों के बदलाव का साक्षी होता है। इसलिए चतुर्वेदी जी साहित्य के विकास के साथ साथ संवेदना के विकास को रेखांकित करना इतिहासकार के कर्म का आवश्यक अंग मानते हैं। मानवीय संवेदना को सृजनात्मक अभिव्यक्ति देने के कारण मानव जीवन में भाषा का विशेष महत्व है। सच्चाई तो यह है कि मानव के पशु सुलभ धरातल से ऊपर उठकर मनुष्य बनने की प्रक्रिया भाषा के आविर्भाव से ही शुरू हुई थी। चतुर्वेदी जी के शब्दों में आरंभिक संवेदनों और सहज वृत्तियों पर निर्भरता से ऊपर उठा वयस्क मनुष्य भाषा में अपनी चेतना को सदैव सक्रिय पाता है। यहाँ तक कि स्वप्न में भी उससे छुटकारा नहीं। तब क्या हम यह नहीं कह सकते कि मनुष्य भाषा में जीता है, जीने का अनुभव करता है और जब तक और जिस सीमा तक भाषा नहीं बनी रहती थी तब तक और उस सीमा तक मनुष्य पशु ही था। चतुर्वेदी जी काव्य की रचना को सर्जना मानते हैं और इसे उत्पादन और सृष्टि से अलग करते हुए कहते हैं। उत्पादन में एक रूपता का भाव है, सृष्टि में विशिष्टता का और सर्जन में अद्वितीयता का। यंत्र में पदार्थों का उत्पादन होता है, सृष्टि जीवधारियों की होती है और सर्जन कलाओं का होता है। किसी विचार या अनुभव को एक दूसरे व्यक्ति में इस रूप में संक्रमित करना कि वहां उसका नया विकास संभव हो, सर्जन प्रक्रिया का आरंभिक चरण है। अनुभव या विचार का यह संक्रमण भाषा में ही संभव है। इसलिए सर्जन और भाषिक संरचना एक ही प्रक्रिया की दो संज्ञाएं मानी जा सकती हैं। सर्जन में अद्वितीयता के भाव को विशेष महत्व देते हुए चतुर्वेदी जी अज्ञेय की काव्य दृष्टि के निकट पहुंच जाते हैं। अनुभव की महनीयता अज्ञेय की काव्य संवेदना का केंद्र बिंदु है। इसलिए चतुर्वेदी जी यह अनुभव करते हैं कि आधुनिक साहित्य में मानवीय व्यक्तित्व और उसकी सृजनात्मकता की सबसे गहरी और सार्थक चिंतन साहित्य सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के कृतित्व में मिलती है। कहना न होगा कि डॉक्टर चतुर्वेदी की समीक्षा यात्रा के केंद्र में अज्ञेय का साहित्य है। हिंदी नवलेखन 1960 ईस्वी के रचनाकाल में उन्होंने आधुनिकता को समझने और व्याख्यायित करने की कोशिश की थी। चतुर्वेदी जी के अनुसार ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी कविता में आधुनिकता का प्रवेश अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक 1943 ईस्वी के प्रकाशन के साथ होता है। आधुनिकता को परिभाषित करते हुए रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं, आधुनिकता का प्रश्न अपने आप में बहुत उलझा हुआ है, फिर भी इतना तो कहा जा सकता है कि आधुनिकता एक जड़ स्थिति न होकर विकास की स्थिति है। उसकी प्रकृति सदैव गयात्मक रहती है, नवीन परिस्थितियों के संदर्भ में अपने आप का संस्कार करना ही आधुनिकता है। संस्कार करने की यह स्वचेतन प्रक्रिया आरोपित न होकर सहज स्वाभाविक होती है। आधुनिकता संस्कृति की ग्रहणशीलता तथा विकासोन्मुखता की परिचायक दृष्टि है। इसलिए वह समुचित जीवन व्यवस्था को प्रभावित करती है, उसके किसी खंड विशेष को नहीं। कुल मिलाकर आधुनिकता एक भविष्योन्मुखी दृष्टि है। वर्तमान के संदर्भ में चतुर्वेदी जी आधुनिकता और समकालीनता में भेद करते हैं। वे कहते हैं, प्रत्येक युग में आधुनिकता के सूचक उपकरण भिन्न भिन्न रहते हैं। जो पहले आधुनिक हैं वह शायद आगे न रह सके। दृष्टि में आधुनिकता का यह विकास भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखकर होता है। इसलिए समसामयिक और आधुनिक में बराबर अंतर बना रहता है। डॉक्टर चतुर्वेदी के अनुसार नव लेखन मूलतः नई कविता की तीन प्रधान प्रवृत्तियां हैं, आधुनिकता, स्वचेतना और तथा बौद्धिकता। अज्ञेय की प्रसिद्ध कविता यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता पर इसको भी पंक्ति को इस भी पंक्ति को दे दो को उद्धृत करने के बाद वे कहते हैं, अज्ञेय की यह कविता आधुनिकता, स्वचेतना तथा बौद्धिकता नई कविता की तीनों प्रधान प्रवृत्तियों की सशक्त अभिव्यक्ति है। चतुर्वेदी जी अनुभव करते हैं कि कविता अज्ञेय के लिए आनंद उपभोग की वस्तु न रहकर जीवन के गहन अर्थों तथा भाव स्तरों के साथ संपृक्त हो गई है। अज्ञेय की उपर्युक्त कविता में निहित व्यक्तिवाद को स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं, अज्ञेय को व्यक्तिवादी इंडिविजुअलिस्ट कहकर उनका तिरस्कार प्रायः किया गया है, पर ऐसा वे ही कर सके हैं जो अपनी सीमित दृष्टि के कारण व्यक्तिवादी इंडिविजुअलिस्ट तथा व्यक्तित्ववादी पर्सनलिस्ट के बीच अंतर को नहीं समझ सके। अज्ञेय की दृष्टि व्यक्तित्व को प्रधान मानकर चलती है। ऐसा व्यक्तित्व जो गर्व भरा तथा मदमाता होने पर भी स्वतः विसर्जित है। समग्रतः रचना के स्तर पर आधुनिक होने का प्रयास अज्ञेय का है। इस सूत्र को चतुर्वेदी जी ने कई जगह दोहराया है। वे बलपूर्वक कहते हैं, विशिष्ट अर्थ में आधुनिक रचना के जो तत्व समझे जाते हैं, स्वचेतना, बौद्धिकता, गैर रोमांटिक वृत्ति और भाषिक सर्जनात्मकता पर बल, जिसके फलस्वरूप मित कथन और अमूर्ततन का विकास होता है। इनका आरंभिक विकास हमें अज्ञेय के कृतित्व में मिलता है। इस दृष्टि से सही अर्थ में आधुनिक रचना की समस्या से सर्जनात्मक स्तर पर जूझने का हिंदी साहित्य के इतिहास में पहला महत्वपूर्ण उपक्रम अज्ञेय का है। आधुनिक रचना के उपर्युक्त तत्वों के सामाजिक सांस्कृतिक आधार का विश्लेषण भी चतुर्वेदी जी ने किया है। उनके अनुसार 19वीं सदी में विज्ञान के विकास ने परंपरागत धार्मिक आस्था को विघटित कर दिया था। 20वीं सदी में दो महायुद्धों ने मानवीय संवेदना को झकझोर कर रख दिया। परंपरागत सारे नैतिक सांस्कृतिक मूल्य विघटित हो गए। यंत्र के सामने मनुष्य अपने को बौना समझने लगा है। मृत्यु की विभीषिका ने उसे अपने अस्तित्व के प्रति अधिक चिंतातुर कर दिया है। ईश्वर के प्रति आस्था समाप्त हो गई है। अभी तक नैतिक मूल्यों का स्रोत ईश्वर था, अब मनुष्य स्वयं में नैतिक मूल्यों के स्रोत का अनुसंधान करने लगा। विज्ञान ने हमारी जीवन दृष्टि को अधिक बौद्धिक बना दिया। धर्म और ईश्वर के साथ स्थान पर व्यापक मानवतावाद की प्रतिष्ठा हुई। बौद्धिक चेतना के जागृत होने से गैर रोमांटिक वृत्ति विकसित हुई। इस वृत्ति ने अतीत और प्राकृत के सम्मोहन को समाप्त कर दिया। फलस्वरूप तटस्थ निर्वैयक्तिक दृष्टि विकसित हुई। रचनाकार के सामने मानव और प्रकृति के साथ ही प्रविधि से भी सामंजस्य स्थापित करने की समस्या उत्पन्न हुई। यंत्रों के असंतुलित विकास ने मनुष्य को पदार्थ बना दिया है। मनुष्य की स्वतंत्रता दो स्तरों पर सीमित होने की स्थिति में आ गई। राजनीतिक स्तर पर फासिज्म ने उसे निर्मूल करने की कोशिश की और वैज्ञानिक स्तर पर यांत्रिकता ने, चतुर्वेदी जी के अनुसार, स्वातंत्र की चेतना अज्ञेय के व्यक्तित्व और जीवन दृष्टि का केंद्रीय तत्व है। नई कविता और नव लेखन की पूरी परंपरा इस समस्या से जूझती रही है। राजनीतिक परिवेश को दृष्टि में रखकर विचार करने पर प्रजातंत्र की मौलिक मान्यताएं स्वातंत्र्य चेतना के अनुकूल है। फासिज्म, टोटेलिटेरियनिज्म, अधिनायकवाद तथा एक तंत्रीय राज्य प्रणालियां इसके प्रतिकूल हैं। अज्ञेय साम्यवादी विचारधारा का समर्थन इसलिए नहीं कर पाते कि स्वातंत्र्य के विभावन की सीधी टकराहट साम्यवादी विचारधारा से होती है। बौद्धिकता को चतुर्वेदी जी आज के परिवेश में एक अनिवार्यता मानते हैं। वे कहते हैं, आज का मानव जिस परिवेश में प्रतिष्ठित है, उसकी समस्याएं प्रमुख रूप से बौद्धिक हैं। आवेग, आवेश, उत्साह तथा दया संभवतः वर्तमान संदर्भ में अनावश्यक से हो चले हैं। लोकतंत्र की आधारशिला तर्क पद्धति है। भावुकता, फासिज्म, लिटेरियनिज्म, अधिनायकवाद अथवा एक तंत्रीय राज्य प्रणालियों के अधिक अनुकूल हैं। प्रजातंत्र की मौलिक मान्यताओं से विकसित नई कविता को इसलिए मूलतः बौद्धिक रहना है। बौद्धिकता गैर रोमांटिक प्रवृत्ति को विकसित करती है। अज्ञेय में गैर रोमांटिक वृत्ति का निरंतर विकास लक्षित किया जा सकता है। इस वृत्ति के विकास से चीजों के प्रति रागात्मक तटस्थता का भाव उत्पन्न होता है, जिसके चलते अज्ञेय को इलियट का निर्वैयक्तिकता का काव्य सिद्धांत मान्य हुआ। गैर रोमांटिक वृत्ति विकसित होने से ही आज के रचनाकार की समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता। इतिहास, मोह, परंपरागत धार्मिक विश्वास, ईश्वर आदि से मुक्त होकर जब आधुनिक मनुष्य ने स्वयं को सारे नैतिक मूल्यों के मौलिक स्रोत के रूप में प्रतिष्ठित किया, तो स्वभावतः उसका दायित्व बोध बढ़ गया। वह अपने विषय में गहन चिंतन में लीन हुआ। आणविक अस्त्रों के खतरे ने भी मनुष्य को अपने अस्तित्व और उसकी सार्थकता के विषय में बुनियादी ढंग से सोचने के लिए विवश किया। फलस्वरूप आधुनिक साहित्य में स्वचेतनता की प्रवृत्ति बढ़ी। इस प्रकार स्वचेतनता और निर्वैयक्तिकता के बीच एक प्रकार की टकराहट उत्पन्न हुई। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के शब्दों में, आधुनिक युग में उत्तरोत्तर बढ़ती हुई स्वचेतनता की प्रतिक्रिया में स्वरक्षात्मक कवच के रूप में लेखक ने निर्वैयक्तिकता विकसित की है, और इन दोनों वृत्तियों का द्वंद्व आधुनिक कला की शक्ति का मुख्य उत्स है, और यह द्वंद्व ही पूरी रचना में रागा कलात्मक संगठन और तनाव उत्पन्न करता है। यूरोप में स्वचेतनता की प्रवृत्ति ने अस्तित्ववादी दर्शन को जन्म दिया। अस्तित्ववाद क्षण की वास्तविकता को महत्व देता है। जीवन की अनुभूति दे सकने वाले प्रत्येक क्षण का महत्व उसे मान्य है। अज्ञेय ने क्षणवाद को विशेष महत्व दिया है। नदी के द्वीप में रेखा कहती है, मेरे लिए कला का प्रवाह भी प्रवाह नहीं, केवल क्षण और क्षण का योगफल है। मानवता की तरह ही कला प्रवाह भी मेरे निकट युक्ति सत्य है। वास्तविकता क्षण ही की है, क्षण सनातन है। अस्तित्ववाद की दूसरी महत्वपूर्ण मान्यता मृत्यु के संत्रास की है। अज्ञेय इसको स्वीकार नहीं करते। वे नहीं मानते कि मृत्यु का संत्रास पूरे जीवन को अनर्थक बना देता है। उनकी मान्यता है कि नश्वरता का भाव ही जीवन को सृजनात्मक, रसमय और सार्थक बनाता है। इस प्रकार अज्ञेय के रचनाकार व्यक्तित्व में पश्चिम और पूर्व का सामंजस्य लक्षित होता है। चतुर्वेदी जी के शब्दों में एक ओर काल की अनंत असीम भारतीय परिकल्पना को छोड़कर अस्तित्ववादी क्षण को महत्व देना है और दूसरी ओर अस्तित्ववादी निरर्थकता के संकट से ऊपर उठकर नश्वरता को सृजनात्मकता का प्रेरक तत्व मानते हुए आस्था की भारतीय दृष्टि का आख्यान है। यो अज्ञेय के व्यक्तित्व में पूर्व और पश्चिम बड़े सहज भाव से पूरे आत्मसम्मान और निष्ठा के साथ संपृक्त करता है। चतुर्वेदी जी नवलेखन के संदर्भ में बाह्य प्रभाव की बात स्वीकार नहीं करते। वे कहते हैं, समस्त नए साहित्य का अध्ययन विदेशी प्रभावों के रूप में न होकर एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के रूप में होना चाहिए। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में यूरोप, अमेरिका तथा एशिया के कुछ देशों की समस्याएं एक सी रही हैं। औद्योगिकता की प्रवृत्ति, महायुद्ध की विभीषिका, एक व्यापक शंका का वातावरण और मानवीय व्यक्तित्व के खतरे, विज्ञान के नए चरण, धार्मिकता का विघटन और आस्थाहीनता, समाजवादी प्रजातंत्र का उदय तथा एक व्यापक मानववाद का में आस्था का पुनः स्थापन, आधुनिक इंडो यूरोपीय संस्कृति के विकास के पदचिन्ह है। इसी भारतीय संस्कृति परिवेश में संवेदनात्मक सूक्ष्मता, रागात्मक तटस्थता और बौद्धिकता तथा लोक संपृक्ति के तत्वों का विकास हुआ है। इसलिए ये तत्व अंतर्राष्ट्रीय कहे जा सकते हैं। चतुर्वेदी जी की दृष्टि में अंग्रेजी न्यू राइटिंग और हिंदी नवलेखन दोनों के संदर्भ एक नहीं है। अंग्रेजी न्यू राइटिंग की पृष्ठभूमि में यांत्रिक और युद्धप्रिय संस्कृति है, जबकि हिंदी नवलेखन मुख्यतः आर्थिक और सामाजिक विषमता तथा व्यक्तित्व के विघटन का आख्यान है। अज्ञेय के अतिरिक्त चतुर्वेदी जी ने प्रसाद और निराला का भी विस्तृत मूल्यांकन किया है। प्रसाद निराला अज्ञेय 1989 इसी उनकी चर्चित पुस्तक है। इसी में उन्होंने मुक्तिबोध की प्रसिद्ध रचना अंधेरे में की भी समीक्षा की है। इस संदर्भ में यह ध्यान देने की बात है कि डॉक्टर चतुर्वेदी ने प्रसाद निराला और अज्ञेय और मुक्तिबोध आधुनिक हिंदी साहित्य के इन चारों महान कवियों को एक बिंदु पर जोड़ने की कोशिश की है। निराला की अप्रतिम रचना राम की शक्ति पूजा और अज्ञेय की प्रख्यात रचना असाध्य वीणा दोनों के अंतिम अंश उद्धृत करने के बाद वे कहते हैं, आत्मदान के माध्यम से शक्ति पूजा के राम शक्ति साधना करते हैं और आत्मदान के ही माध्यम से असाध्य वीड़ा का कलावंत वीड़ा को साधता है। यही शक्ति और सृजन के रहस्य का साक्षात्कार है। चतुर्वेदी जी कहना चाहते हैं कि निराला के राम शताब्दियों से पराधीन और पिछड़े भारतीयों में पुनः सौंदर्य, उल्लास और शक्ति की चेतना जागृत करने के लिए शक्ति की आराधना करते हैं और आत्मदान के द्वारा शक्ति को अपने भीतर जागृत करते हैं। यह शक्ति सृजन शक्ति है। कवि को नए भारत का सृजन करना है, इसलिए वह शक्ति की दृढ़ आराधना उस सीमा तक करता है जहां दोनों का अभेद हो जाता है। अज्ञेय के सामने भी केंद्रीय प्रश्न सृजन का ही है। यंत्र और सर्वत सर्वसत्तावाद के आतंक में फंसे मानवीय व्यक्तित्व को सृजनात्मकता की दिशा में गतिशील करना उनका भी लक्ष्य है। इसलिए इसके लिए वे भी आत्मदान के द्वारा असाध्य वीणा को साधते हैं। वीणा तभी सधती है जब वे सब कुछ की तत्थता से अद्वैत स्थापित कर लेते हैं। वीणा का साधना सृजनात्मक शक्ति का लब्ध होना ही है। चतुर्वेदी जी के अनुसार मुक्तिबोध की लंबी कविता अंधेरे में भी रचना शक्ति की खोज का आख्यान है। वे कहते हैं, अंधेरे में के लंबे खंडों में कवि की समस्या है समाज के उत्थान पतन और आंदोलन के बीच अपनी रचना के प्रेरक तत्वों का अभिज्ञान और उनकी बनावट की पहचान। कविता के अंत में कवि ने जिस खोई हुई परम अभिव्यक्ति अनिवार आत्मसंभवा के खोजने की बात कही है, वह उसकी सृजनात्मक शक्ति ही है। अंधेरे में और असाध्य वीणा की तुलना करते हुए चतुर्वेदी जी कहते हैं, कवि की अनखोजी रही परम अभिव्यक्ति जिसे कवि गुरु स्थानीय मानता है, मैं उसका विषय हूँ, वह मेरी गुरु है। शक्ति का वह विराट रूप है जो गुहा से निकल कर भीड़ में मिल जाता है और जहाँ से कवि की खोज शुरू होती है, खोजता हूँ पठार पहाड़ समुन्दर। दोनों कविताओं की वस्तु और विधान ही नहीं, उनके शीर्षक भी सर्जन प्रक्रिया के अन्वेषण को संकेतित करते हैं। अंधेरे में सृजन का आवश्यक परिवेश और संदर्भ है। असाध्य वीणा को साधने के उपक्रम क्रम में कलाकार भी अपने को सघन निविड़ में उतारता है। अंदर और बाहर की अंतर प्रक्रिया इन दोनों लंबी कविताओं में रचनात्मकता का उत्स है। प्रसाद के सामने भी मुख्य समस्या सृजनात्मक शक्ति के विकास की ही है। कामायनी में काम साफ देता है कि मानवीय सृष्टि मरणशील होगी, देव सृष्टि अजर अमर थी, मानवीय सृष्टि आरंभ में ही मृत्यु के लिए अभिशप्त हो गई। प्रसाद के मनु इस चुनौती को स्वीकारते हैं। वे मनुष्य में प्रेम और सृजनात्मक शक्ति को विकसित करके मरणशीलता के शाप को वरदान में बदल देते हैं। चतुर्वेदी जी के अनुसार बुनियादी तौर पर ये दोनों प्रतिक्रियाएं भी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मनुष्य मृत्यु पर विजयी होता है अपने प्रेम से और अपनी रचना में, जो स्थूल स्तर पर उसकी संतान है और सूक्ष्म स्तर पर दर्शन विज्ञान साहित्य और कलाएं हैं। जो अभिशाप को काम्य नियति के रूप में बदल लिया जाना कामायनी की वस्तु का एक प्रधान तत्व है। मनुष्य अपनी मरणशीलता को सृजनात्मक शक्ति के प्रेरक तत्व रूप में स्वीकार करता है। चतुर्वेदी जी ने कविता यात्रा, नई कविताएं, एक साक्ष्य, हिंदी नवलेखन तथा हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास आदि कृतियों में अन्य नए कवियों का भी मूल्यांकन किया है। इस मूल्यांकन में उन्होंने नवलेखन के आधारभूत तत्वों आधुनिकता, स्वचेतनता, मानवीय नियति, बौद्धिकता, भाषिक सृजनात्मकता आदि के अतिरिक्त अलग अलग रचनाकारों की निजी विशेषताओं को भी रेखांकित किया है। उदाहरण के लिए जीवन के कटुतम संघर्षों को लेकर उन्हें कविता में एकदम तरल बना सकना शमशेर बहादुर सिंह के काव्य व्यक्तित्व की पहचान है। इतिहास और संस्कृति की परतों में औसत भारतीय जीवन आज कितना पाखंडी हो गया है, इसको कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना उधार देना चाहता है। मनुष्य जीवन की नियति को उसके समूचे विस्तार में देखना और प्रासंगिक बनाए रखना रघुवीर सहाय के कवि कर्म का केंद्रीय तत्व है। मानवीय नीति की सार्थकता का प्रश्न बड़े संगत भाव के कुंवर नारायण ने आत्मजयी में उठाया है। अंधा युग बनाम आस्था पूरी रचना भारतीय के अंधा युग का संघर्ष यही है। अंधेरे की शक्तियों से जूझने का उपक्रम अपने अपने ढंग से निराला में है, मुक्तिबोध में है, भारती में है। केदारनाथ सिंह काव्य विकास के अपने हर दौर में वस्तु के स्तर पर जमीन से जुड़े रहे हैं और विधान के स्तर पर बिंब से, तीखेपन और व्यंग विदुप्त से रचने की क्षमता श्रीकांत वर्मा की विशेषता है। मानवीय प्रणय और सामाजिक इतिहास की शक्तियों तथा उनकी अंतर क्रिया की को सूफी संतों जैसी संकेतित रहस्य शैली में व्यक्त करना शाही विजय देव नारायण शाही की विशेषता है। साधारण जन और साधारण प्रकृति का साहचर्य केदारनाथ अग्रवाल की काव्य क्षमता का मुख्य स्रोत है। चतुर्वेदी जी द्वारा अलग अलग कवियों का यह वैशिष्ट्य निदर्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल की याद दिलाता है। परिवर्तन को सहज और विकास को प्रयत्न साध्य तथा आधुनिकता को स्वचेतन प्रयत्न मानने वाले चतुर्वेदी जी ने नवलेखन के बाद युवा लेखन के दौर पर भी विचार किया। चतुर्वेदी जी के अनुसार युवा लेखन में नवलेखन की स्वचेतनता के प्रति विरोधी प्रतिक्रिया हुई है। इस पीढ़ी को रचना के मूल में विक्षोभ, आक्रोश और विद्रोह का भाव प्रेरक रहा है। इनका विद्रोह यौन जीवन के प्रचलित रूपों के विरुद्ध सीधी अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट हुआ है, इसलिए इसकी परिणति अश्लीलता में हुई है। सीधी अभिव्यक्ति के बाद सपाट बयानी का दौर चला। इसकी शुरुआत सुदामा पंडित धूमिल से हुई। राजकमल चौधरी ने भी सपाट बयानी को महत्व दिया, किंतु वे कविता आंदोलन से जुड़कर यौन जीवन के चित्रण को महत्व देने लगे। उनकी तलखी और चुस्त मुहावरेदानी ने नई पीढ़ी को प्रभावित किया। धूमिल के साथ लीलाधर जगुड़ी का नाम लिया जा सकता है। इनमें भी तलखी और बेचैनी का वही स्वर मिलता है जो धूमिल में है। सपाट बयानी के साथ युवा कवियों ने व्यंग को विशेष महत्व दिया। व्यंग की प्रवृत्ति नई कविता में भी थी, किंतु वहाँ वह एक उपकरण मात्र थी। नई पीढ़ी ने उसे पूरे विधान के केंद्र में रख दिया। चतुर्वेदी जी के अनुसार युवा पीढ़ी यथार्थ के बहुआयामी और बहुस्तरीय रूप को न समझकर यथार्थ के अति सरलीकरण पर उतर आई है। उनका निष्कर्ष है कि यह सब समकालीन जीवन में राजनीति का अनुपात महत्वशाली होते जाने की परिणतियां हैं। हिंदी में गद्य के अपनी कोई निजी सत्ता न मानने वाले डॉक्टर चतुर्वेदी आधुनिक हिंदी साहित्य में गद्य विधाओं के विकास से कतई संतुष्ट नहीं है। वे चिंतित हैं कि रचना के क्षेत्र में सूचनात्मक गद्य छाया हुआ है। उन्हें वर्णन और अनुभव की तरलता का सही अनुपात महादेवी हजारी प्रसाद द्विवेदी अज्ञे और शमशेर बहादुर सिंह के गद्य में ही एक सीमा तक दिखाई पड़ता है। कथा साहित्य में सूक्ष्म और जटिल अनुभव को संप्रेषित करने की प्रक्रिया का विकास नहीं हो पा रहा है। कथाकार यथार्थ को रचने और संप्रेषित करने की समस्या से कतराकर यथार्थ की प्रस्तुति करने में जुटे हुए हैं, इसलिए पूरा कथा साहित्य असमय वृद्ध हो गया है। उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचंद, जैनेन्द्र अज्ञे, रेणु, यशपाल, अमृतलाल नागर और हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद कोई नई संभावना नहीं दिखाई देती। इनमें भी सूक्ष्म संवेदना के विकास की दृष्टि से हम अज्ञेय तक एक आकार आकर रुक गए हैं। नाटकों के क्षेत्र में प्रसाद, भुवनेश्वर, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण लाल और मोहन राकेश के बाद सर्जनात्मक विकास अवरुद्ध सा हो गया है। चिंतन के गद्य की स्थिति भी उत्साहवर्धक नहीं है। नए अकाल्पनिक गद्य वृत्तों, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रावृत्त, डायरी आदि का विकास इतिवृत्त से अनुभव की ओर अवश्य हुआ है और इनमें भाषा के हल्के सृजनात्मक संवेदनाशील रूपों को लक्षित किया जा सकता है। किंतु इनसे गद्य साहित्य रचना के स्तर पर बहुत समृद्ध हुआ हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। हिंदी का आलोचनात्मक गद्य भी सूक्ष्म चिंतन से हटकर वर्गीकरणों की भीड़ में खो गया है। सब मिलाकर आधुनिक हिंदी गद्य अपनी निजी पहचान नहीं बना सका है। हिंदी साहित्य की वर्तमान स्थिति में भी चतुर्वेदी जी संतुष्ट नहीं है। युवा लेखन न कविता के क्षेत्र में उन्हें संतुष्ट कर सका है, न गद्य रचना के क्षेत्र में। यह अकारण नहीं है कि हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास का अंत उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रसाद, तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त और प्रेमचंद को याद करते हुए किया है। भाषा और अनुभूति के अद्वैत को सृजनात्मकता की चरम निष्पत्ति मानने वाले डॉक्टर चतुर्वेदी अपने विवेचन क्रम में भाषिक विश्लेषण की सीमाओं में ही उलझकर नहीं रह जाते हैं। वे काव्य भाषा के जटिल विकास क्रम, संदर्भ, प्रतीक, भाव, चित्र, बिंब, मित कथन, अमूर्तन को निरंतर ध्यान में रखते हुए भाषिक विश्लेषण द्वारा रचना में निहित केंद्रीय संदर्भ तक पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं। उन्होंने निराला, प्रसाद, अज्ञेय, मुक्तिबोध की समीक्षा करते हुए उनकी काव्य भाषा की विशेषताओं को निर्दिष्ट करने के साथ ही उनकी रचनाओं में अंतर्निहित समकालीन राष्ट्रीय संदर्भों, व्यक्तिगत जीवन संघर्षों, व्यापक मानवीय मूल्यों एवं सांस्कृतिक टकराहटों तथा सृजन की केंद्रीय परक प्रेरक संवेदना को भी स्पष्ट किया है। यह अवश्य है कि सृजनात्मक विकास की चरम निष्पत्ति को समीक्षा के केंद्र में रखने के कारण डॉक्टर चतुर्वेदी की समीक्षा भूमि कुछ संकुचित हो गई है। समीक्षा भूमि का यह संकोच गद्य रचनाओं के मूल्यांकन में साफ लक्षित होता है। चतुर्वेदी जी ने उपन्यास की समीक्षा में काव्य भाषा की तरह कथा भाषा का प्रश्न उठाया है। वे कहते हैं, वर्णन की परंपरित स्थूल भाषा और नई कविता की अमूर्त रूपी विरूपीकृत भाषा को एक रचना विधान में कैसे संगठित किया जा सके जाए जिससे दोनों के बीच न जोड़ दिखाई दे और न दरार ही। यही आधुनिक उपन्यास की मूल समस्या है। इस प्रकार डॉक्टर चतुर्वेदी ने उपन्यास की समस्या को भाषा की समस्या का पर्याय मान लिया है और तब वे अनुभव करते हैं कि नए उपन्यासकारों में डॉक्टर देवराज, नरेश मेहता, लक्ष्मीकांत वर्मा, प्रभाकर माचवे, रघुवंश, कृष्ण बलदेव वैद्य, विपिन कुमार अग्रवाल और गंगा प्रसाद विमल ने ही वर्णन की स्थूल भाषा से ऊपर उठने का प्रयत्न किया है। कहना न होगा कि डॉक्टर चतुर्वेदी की कसौटी पर खरे उतरने वाले उपर्युक्त उपन्यासकारों में किसी को भी अन्य समीक्षकों ने श्रेष्ठ उपन्यासकारों की श्रेणी में नहीं रखा है। वस्तुतः भाषा और अनुभूति का अद्वैत कविता में भले सध जाए, उपन्यास में उसको साधना कठिन है। उपन्यास में रचनाकार को अपनी संवेदना का इतना प्रसार करना पड़ता है कि वह पूरे समाज का एक संगठित संश्लिष्ट चित्र अनुभव की भाषा में प्रस्तुत कर सके। वर्णन की स्थूलता का अतिक्रमण अज्ञेय के नदी के द्वीप में किया गया है, किंतु इस अतिक्रमण का या यूं कहिए कि भाषा का और अनुभूति के अद्वैत को साधने की प्रक्रिया का परिणाम यह हुआ है कि नदी के द्वीप अपनी अद्वितीयता के बावजूद एक प्रणय कथा बनकर रह गया है। कुछ भी हो, भाषा और अनुभूति के अद्वैत के प्रतिमान के आधार पर नए साहित्य का मूल्यांकन करके डॉक्टर चतुर्वेदी ने नई समीक्षा को प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अपनी नवीनतम प्रकाशित पुस्तक कविता का पक्ष 1994 ईस्वी में डॉक्टर चतुर्वेदी दो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं। एक है राजनीति और विचारधारा के सर्वग्राही चरित्र से कविता की रक्षा, और दूसरा है सांस्कृतिक प्रदूषण जो अमेरिकी राजनीतिक सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के फैलाव के साथ हमारी संस्कृति को बुरी तरह प्रदूषित कर रहा है को दूर करने का कविता का दायित्व, अर्थात माध्यम के संयुक्त मोर्चे से कविता की रक्षा भी करनी है। दूसरी ओर सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के फैलाव से उत्पन्न सांस्कृतिक प्रदूषण से अपनी संस्कृति को मुक्त रखने में कविता को जो निभानी है उसके प्रति उसे जागरूक भी करना है। निश्चय ही ये दोनों प्रश्न आज के परिवेश में विशेष रूप में से विचारणीय है। आज के परिवेश में कविता का पक्ष प्रस्तुत करके डॉक्टर चतुर्वेदी ने एक सजग समीक्षक के दायित्व का निर्वाह किया है। किसी समीक्षक की समीक्षा दृष्टि को समझने के लिए उसके द्वारा प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों पर भी विचार करना आवश्यक है, क्योंकि पारिभाषिक शब्द समीक्षक विशेष की समीक्षा यात्रा के साक्षी होते हैं। अपनी समीक्षा यात्रा में डॉक्टर चतुर्वेदी ने अस्तित्ववाद, अति यथार्थवाद, प्रयोगवाद, व्यक्तित्ववाद, नव मानवतावाद, आधुनिकतावाद, लघु मानव, क्षणवाद, निर्वैयक्तिकता, सृजनात्मक रहस्यवाद, संवेदना, संवेदनात्मक संघात, भाषिक सर्जनात्मकता, अनुभव की अद्वितीयता, प्रतीक, अभिप्राय, संश्लिष्ट भाव, चित्र, बिंब, अमूर्तन आदि पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया है। आलोचना की पारंपरित शब्दावली का प्रयोग आपने कम किया है। ध्वनि, रस, सहृदयता, साधारणीकरण, अप्रस्तुत विधान जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए आपने यह स्पष्ट करना चाहा है कि ये शब्द अब संदर्भच्युत हो गए हैं, डॉक्टर चतुर्वेदी के प्रिय पारिभाषिक शब्द हैं सर्जनात्मकता, संवेदना, संश्लिष्ट भावचित्र या बिंब तथा विभावन। इनकी प्रियता का कारण है आधुनिक अस्तित्ववादी चिंतन ने जो मृत्यु का आतंक उत्पन्न करके जीवन को अनर्थक बना दिया है, उससे बचने के लिए सृजनात्मकता अनिवार्य है। संवेदन चित्त वृत्तियों का वह संश्लेष है जो युग परिवर्तन के साथ बदलता रहता है। इसलिए साहित्य के विकास के साथ साथ संवेदना के विकास को रेखांकित करना साहित्य के इतिहासकार के लिए आवश्यक है। संश्लिष्ट भाव चित्रों या बिंबों की भाषा ही वास्तविक काव्य भाषा है। काव्य भाषा ही वह आधार है जिसके सहारे कविता के संगठन को समझा जा सकता है। बिंब विधान का विश्लेषण भारतीय काव्यशास्त्र में नहीं हुआ है, इसलिए तात्विक विश्लेषण और व्यावहारिक मूल्यांकन दोनों स्तरों पर बिंब विधान को महत्व देना नए समीक्षक का कर्तव्य है। विभावन शब्द अपने आप में अत्यंत प्राचीन है। इसका अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान, निश्चय, विवेक, निर्णय, विचार, विमर्श, गवेषण, प्रत्यय आदि। डॉक्टर चतुर्वेदी ने इसमें अंग्रेजी के कॉन्सेप्ट का अर्थ संपृक्त कर दिया है और इसे एक नई मर्यादा प्रदान कर दी है। आपके अनुसार लक्षणा व्यंजना प्राचीन साहित्य शास्त्र के विभावन है। इसी प्रकार प्रतीक तथा भावचित्र नव्य समीक्षा के विभावन है। डॉक्टर चतुर्वेदी ने विभावन शब्द का खूब प्रयोग किया है। लोक मंगल का विभावन, संश्लिष्ट चित्र, इन दोनों विशिष्ट पारिभाषिक शब्दों में संश्लिष्ट चित्र को अधिक महत्व दिया है। ऐसा लगता है कि उन्होंने हिंदी नव्य समीक्षा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परंपरा से जोड़ने के लिए इस आधार सूत्र का विवेक और निष्ठा के साथ प्रयोग किया है। उनके अनुसार आचार्य शुक्ल की आलोचना प्रक्रिया को समझने के लिए केंद्रीय शब्दावली का संश्लिष्ट चित्रण और लोक मंगल हिंदी समीक्षा के इतिहास में लोक मंगल की चर्चा अधिक हुई है, संश्लिष्ट चित्रण की कम। कदाचित इस कमी को पूरा करने के लिए चतुर्वेदी जी ने संश्लिष्ट चित्रणों को संश्लिष्ट चित्र, भाव चित्र या बिंब विधान के रूप में विकसित किया है और इसे अपनी समीक्षा के केंद्र में प्रतिष्ठित किया। सब मिलाकर डॉक्टर चतुर्वेदी ने अपनी समीक्षा यात्रा में भाषा और अनुभूति के अद्वैत को पूरी निष्ठा से प्रतिष्ठित किया है और इस अद्वैत को ही सर्जनात्मकता की चरम निष्पत्ति प्रमाणित किया है। अध्याय 11, भाषा और अनुभूति के अद्वैत की तलाश, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का अध्याय समाप्त। हिंदी आलोचना शिखरों का साक्षात्कार, रामचंद्र तिवारी द्वारा रचित पुस्तक समाप्त।